अब चलते हैं पारा नंबर 15 पे। कुरान पाक का नेस्फ होने लगा, सोचिए ज़रा, पता चला ही ना आधे कुरान पाक के सफ़र का। आप कहते हैं कि आपके कोर्स के एग्जैक्ट आधे दिन गुजर चुके, तो अब उनका नहीं पता चला तो इनका कहाँ पता चलेगा। वो तो यूं गए थे, अब तो अब यूं जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा ये आखिरी दिन गुजर जाएंगे। जब तक आगे अपने आप को कहीं नहीं बांधेंगे, जमेंगे नहीं। पारा नंबर 15 का टॉपिक क्या है? फितनों के आगे बंद कैसे बांधा जाए। मुराद क्या है कि जब फितनों की हवाएं चलेंगी तो फितनों का मुकाबला कैसे करें, क्या चीज़ थाम लें कि हम माल और हवस के फितने और फहाशी और उरियानी के फितने, इल्म के फितने, हुसन के फितने और इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें। बराह रास्त किताब पे चलेंगे, बुक से पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे वक्त में बरकत दे दे। बुक के हिसाब से पेज नंबर सब बोलिए जिनके सामने बुक रखी है। 239, पेज नंबर 239 से पढ़ते हैं। तज़किया सीरीज़ में इस पारे को हम जिस उनवान में देखेंगे वो बहुत ही अछूता मौजू है, यानी यूनिक मौजू है, फितनों के आगे बंद कैसे बांधा जाए। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि फितनों के मुकाबले में ख़ुद को कैसे कायम रखा जाए। इस पूरे पारे में हम बहुत सारे फितनों को देखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जिसको आप माल का फितना कह सकते हैं, दीन का फितना कह सकते हैं। 1, 2, 3 लिखते जाइए। जहाँ कोई बात इस तरह शुरू हो तो फौरन समझ आया करें कि इधर आपने अब नंबरिंग करनी है। तो पहली चीज़ क्या है बोलिए, दूसरी चीज़ क्या है, तीसरी, ठीक है, माल का फितना, दीन का फितना, औलाद का फितना, इल्म के फितने और इक्तदार के फितने वगैरह। इंशाल्लाह कुरान पाक की रहनुमाई लेंगे कि अपने आप को किस तरह इनसे महफूज रख सकें और दीन पर कायम रह सकें। इसमें हम सूरत बनी इसराइल पूरी की पूरी और सूरत बनी इसराइल का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। सूरत बनी इसराइल को देखिएगा, बनी इसराइल का लफ्ज़ सूरत फातिहा के बाद से ही सुनने में आने लगा, ऐसे ही है ना। यानी सूरत बकरा में बार बार लफ्ज़ बनी इसराइल आया था। 3 आयतें तो आपको रट गई होंगी, या बनी इसराइल अज़कुरु नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ठीक है। बनी इसराइल कौन थे, लिखिए, हाईलाइट करिए इस जुमले को, अपने वक्त के चुने हुए लोग जिनको आज लोग यहूद के नाम से जानते हैं। लोगों ने ऐसे ऐसे फितने उठाए, अल्लाह ताला की किताब के साथ इस किस्म का मामला किया कि अल्लाह ताला ने इनको उठाकर फेंक दिया। बनी इसराइल अपने दौर के मुसलमान थे, अल्लाह ताला ने इनको कई सौ साल तक इंसानों की रहनुमाई के लिए चुना, मनसब दिया, सबसे ज़्यादा अम्बिया कराम इन्हीं के पास आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके आखिरी नबी थे। इसको हाईलाइट कीजिए, ये छोटे छोटे सवाल आपको असाइनमेंट में आ सकते हैं। बनी इसराइल के आखिरी नबी कौन थे और वैसे आखिरी नबी कौन थे, तो दोनों में मुमासलत आ गई ना, यानी दोनों ही एक लिहाज से आखिरी नबी थे। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचते पहुँचते बनी इसराइल का हाल ये हो चुका था कि इनको ये भी ना याद रहा कि हमारी किताबें किस ज़ुबान में नाजिल हुई थी। तारीख़ में कई मौके ऐसे आए, कई साल इस ज़मीन पर ऐसे गुजरे कि तौरात नाम की कोई चीज़ ही ना थी। 100 साल के बाद किसी ने, और किसने, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने, पीछे आप तीसरे पारे में उनका जिक्र पढ़ चुके हैं, 100 साल के बाद किसी ने हाफ़ज़े से जमा करके इसको लिखा। अब बनी इसराइल अपने हिस्से का काम नहीं कर सके, अल्लाह ताला ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि जो काम वो नहीं कर सके वो आप कर दीजिए। बात समझ गए, वाज़े बात। बनी इसराइल माजी के मुसलमान थे, अल्लाह ने उनको अम्बिया कराम की कसरत दी, रिसोर्सेज दिए, सलाहियतें दी, काम करने के मौके दिए। लेकिन अब अगला जुमला दुख के साथ बोलूँगी, जिस तरह आज हम मुसलमान मौके और रिसोर्सेस और सलाहियतों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे, इन्होंने भी ना किया। वो काम जो अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत का इनको दिया था, इन्होंने उसको साइड इशू, पार्ट टाइम जॉब करके और अपने जहन पे खाना पीना घर बच्चे दुनिया 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 रखा। अल्लाह को गैरत आई, क्योंकि आप किसी को काम पे भेजें और वो वहाँ जाकर मस्तियाँ करने लग जाए, क्या करेंगे ऐसे अपने बच्चे के साथ? पकड़ के उसको खूब धुलाई करेंगे उसकी। इन्होंने कुछ ऐसे हरकतें की कि अल्लाह ने बार बार वार्निंग्स दी। जब देखा कि इनके अंदर ख्वाहिशों की मोहब्बत आ गई है और इनके उलमा तासुब वाले हो गए, हट धर्म हो गए, अल्लाह ने कहा निकलो इधर से, तुम नहीं कर सकते ये काम, और उसकी जगह फिर नबी सल्लम को ले आए। अब क्या हुआ कि अल्लाह के नबी मक्का में आए, ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने आपको मक्का में मबूस किया। वहाँ के लोग पहले से ही कुछ और ही चीज़ों में थे। 10 साल हो गए अल्लाह के नबी को दीन की दावत देते हुए। आपने दावत हक दी लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की। ये वो वक्त था जब अल्लाह ने मक्का से निकाल कर आपको मदीना ले जाना था, क्योंकि इन पर हुज्जत तमाम हो गई थी। अल्लाह ताला अपने नबी को आने वाले हालात के जो फितने थे उनके लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे थे। हुआ क्या है कि अल्लाह के नबी के प्यारे सहारे आपकी बीवी हज़रत खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा, जो पहले ही दिन से आपकी मुआविन थी, दुनिया से चली गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। अबू तालिब घर से बाहर आपके बहुत बड़े मुहाफ़िज़ थे, इनका भी इंतकाल हो गया। तारीख इस साल को आमुल हुज़न कहती है। आम किसको कहते हैं? मैंगो को तो नहीं कहते, वो क्या होता है? आम। ये क्या है? आम, आइन से, ठीक है। आम कहते हैं साल को। हुज़न गम, यानी ईयर ऑफ दी सोरो या सैडनेस कह लीजिए, यानी गम का साल। इस साल में अल्लाह ताला अपने नबी को ऐसी निशानी दिखाता है कि रात को आप अपने बिस्तर पर सोए और फरिश्तों के ज़रिए आपको वहाँ से उठाकर बैतुल मक़दस ले जाया गया। बुराक नाम का एक जानवर लाया गया। आज के दौर का जहाज़ आज भी आप मक्का से शाम जाएं तो चंद घंटे में वहाँ पहुँचेगा। चंद घंटे की बात है, आम दिनों में इस वक्त एक महीना लगता था। यानी जब अल्लाह के नबी का दौर था तो मशहूर थी बात कि मदीना से शाम जाना हो तो एक महीना लगता है। ज़ाहिर घोड़ों पे जाते थे, ऊँटों पे जाते थे, बीच में स्टॉप ओवर करते थे, रुकते रुकाते जाते थे। क्या उनके हौसले थे! हम तो ऐसी गाड़ियों और ऐसी सवारियों पे घंटों का सफ़र करके तो हम कितने दूर से पहुँच जाते हैं। सफ़र से इंसान बहुत सीखता, याद रखिए। असल में जो उर्दू का सफ़र है ना, ये इंग्लिश का सफ़र बन जाता है, सफरिंग। ज़रूर बंदे के अंदर सब्र, बर्दाश्त और तब्दीलियों को कबूल करना आता है। तो अल्लाह ने नबी सल्लम को सफ़रे मेराज करवाया और उस नाते से आपकी तरबियत भी की और आपको बहुत कुछ सिखाया। अल्लाह ताला के नबी को बैतुल मक़दस तक जो सफ़र करवाया गया, ये ज़मीन पे था, बाय रोड था कह लीजिए। इस सफ़र को इसरा कहते हैं, आराब लगाइए, सुबहान अल्लज़ी असरा। तो वहाँ असरा आया है तो असरा ही लिख लीजिए, हालांकि इसरा भी कहते हैं। सुबहान अल्लज़ी असरा, सीन रा या होता है सरा, रात को चलना, सरी या कलस भी कुरान पाक में आता है। तो ये सफ़र ज़मीनी सफ़र था, रात के वक्त हुआ, इसलिए इसको असरा कहते हैं। फिर बैतुल मक़दस से आसमानों पर गए, ये मेराज है। तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी का सफ़रे मेराज जो मारूफ है नाम, ये दो हिस्सों मबनी था। शुरू में आपको ज़मीनी सफ़र कराया गया और उसके बाद फिर आपको हवाई सफ़र करवाया गया। हवाई सफ़र का ज़िक्र यानी ज़मीन से आसमान का ज़िक्र सूरत नजम में आएगा। अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को यह सफ़र करवाया, मेराज में जन्नत और जहन्नम के कुछ मनाज़िर दिखाए, बैतुल मक़दस में पिछले अंबिया कराम से आपकी मुलाकात कराई। बैतुल मक़दस में सारे अंबिया कराम ने आपकी इमामत में नमाज़ पढ़ी और इसका नतीजा क्या हुआ कि सबको पता चल गया कि अब बनी इसराइल से इमामत का ताज उठाकर उम्मत मुहम्मदिया को दे दिया गया। इसको हाईलाइट कीजिए। देखिए, हम सब अल्लाह की नज़रों में, इंग्लिश में कहते हैं यू आर बीइंग वॉच्ड, कैमरे की आँख आपको देख रही है, आपकी ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। सुने हैं ना ये जुमले? अल्लाह सुबहाना ताला कौमों को भी उसी तरह से वॉच कर रहा होता है जैसे अफराद को करता है। जब बनी इसराइल ने काम ना किया तो कब तक? एक दिन तो उनका तख्ता उलटना था ना। तो सफ़रे मेराज असल में तब्दीलिये उम्मत का एक सिंबल था। जिन बच्चियों ने सीरत नहीं पढ़ी उनको इतनी समझ नहीं आएंगी ये मेरी बातें, और अभी मैं इतनी खोल के भी नहीं रखूँगी। बस इतना समझ लीजिए, इस्लाम का जो अरूज है ये मदीना आने के बाद शुरू हुआ। मक्का के 13 साल जो शुरू के थे अल्लाह के नबी की नबूवत से लेकर 13 साल तक, इसमें तो परसिक्वेशन थी, ये था फितना असल में उस दौर का। कलमे की कीमत कोड़े, पत्थर, कांटे। आज तो ये होता तो हम कब का छोड़ चुके होते इस दीन को कि रखो अपने घर, हम नहीं लेते। हम तो लोगों की बातें नहीं सुन सकते, हम तो लोगों की माथे की तेवरी नहीं देख सकते कि हो हो दीन पे अमल किया लोग मुझे क्या समझने लग गए। बैकवर्ड मासी मुल्लानी, छोड़ो छोड़ो मुझसे नहीं बातें सुनी जाती। उन्होंने अपने इस जिस्म पे, इस वजूद के ऊपर इस्लाम की कीमत दिलवाई। कोयले, कांटे, पत्थर, कमर जो थी सहाबा में से अक्सर की ऐसी थी जैसे आप समझिए कि जैसे अंडे रखने का एक वो ट्रे नहीं होता, ऐसे ऐसे। एक सहाबी थे जब कबीले इस्लाम के बाद बैठे हुए थे तो सहाबा अपनी बातें याद करते थे, ऐसे जैसे कभी हम इकट्ठे हो जाएं तो बचपन की माजी की बातें साथियों से रिश्तेदारों से डिस्कस करते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि सुनाओ यार, इस्लाम से पहले के क्या हालात थे और ये तो मुसलमान कैसे हो गए। तो उसने कहा मुझसे क्या पूछते हो, अपनी आंखों से देख लो। अपनी कमीज़ उतार कर बैक दिखाई तो सहाबा की चीखें निकल गई थी, उनकी बैक ऐसे थी अंडों के खोल बन चुके, कोयला जहाँ गया अंदर घुस गई, जहाँ से वो जली वो अंदर बम्प्स पड़े। और एक साहबी थे कि उनकी कमर में बच्चे उंगलियाँ डाल डाल के उनके ज़ख्मों से खेलते थे। ये तो आपने मैंने ठंडा ठंडा दीन लिया, हम तो ज़रा एसी वाली गाड़ियों में बैठकर हम कहीं जाएं आए दो दिन आकर हमारी आंखें ही नहीं खुलती, हमने क्या करना है ऐसे लाडले घर बैठे। अल्लाह को मेरे आपके ये लाड़ नहीं पसंद। हज कर रहो या उमरा कर रहो तो फिर उसके बाद 2 महीने घर में रेस्ट करते रहो कि जी उमरा करके आए हैं खैर से, अल्लाह कहता घर बैठो। याद रखिए कि ये बातें करने में बहुत कड़वी है, मदद भी नहीं के साथ है अगर आप जम जाते। यही है फोकस्ड होना। आप जिस चीज़ में फोकस्ड होते हैं, औरतें घर छोड़ती हैं, नहीं नहीं हमारे बगैर घर नहीं चलेगा, दिल भी चाह रहा होता नहीं जाती, नहीं 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 बच्चे हैं मियाँ है, आप फोकस्ड हैं घर में। अल्हम्दुलिल्लाह 98% पाकिस्तानी खवातीन बड़ी फोकस्ड है अपने घरेलू मामलात में। ये तो नहीं कहती खा लेंगे खुद ही कहीं से, मैके जाना होता है बीवी ने बेचारी सारा साल इंतज़ार करती है कोई ऐसा दिन आए कि मैं थोड़े दिन के लिए चली जाऊँ, वहाँ जाके भी फिक्र लगी रहती है मियाँ ने खाया कि नहीं खाया, है ना। ये फोकस होना है सिंपल, एक जुमला बोल देती हूँ, जिस प्यार और मोहब्बत और यकीन से अपने घर चला रहे हैं ना आप लोग, बस उसके साथ अल्लाह का घर चला लें, दिल दिमाग आंखें घर सब इसमें डाल दें, देखिए निखरेगा कितना। एक आप घर सजाती हैं अपना अकेली चंद नौकरों की मदद से, और जब दीन के काम में आप जैसे टैलेंटेड लोग लग जाएं तो इन जगहों की शान क्या होगी। आपका दिल दिमाग हर वक्त इसी में पड़ा रहेगा, आप कहीं भी होंगी। ये नहीं कि औरत 24 घंटे घर के काम करती है लेकिन उसका दिल 24 घंटे घर में ही पड़ा होता है। अल्लाह ये चाहता है हमसे, और जब ये ना किया उन्होंने अल्लाह ने उनको पटख दिया। अल्लाह मुझे भी उठा के वहाँ बाहर धूप में मारेगा कि चलो भागो तुम आराम से बैठो। याद रखिए दीन पे किसी की मोनोपोली नहीं है। तो खुलासा क्या निकला, सूरत बनी इसराइल है, अल्लाह ने इस सूरत के बिल्कुल आगाज़ में वाक़े मेराज को रखा। पहली आयत सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। तो अल्लाह के नबी का सफ़र मेराज इधर क्यों दिया, अब आयत नंबर 2 से उसकी तफसीलात हैं। वातैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उनको बनी इसराइल के लिए हिदायत बना दिया। तो आयत नंबर 2 से चंद अगली आयात में बनी इसराइल की तारीख बयान की गई है। बनी इसराइल कई बार दुश्मनों के हाथों नीस्तो नाबूद किए गए, हाईलाइट कीजिए। अगर कुरान के बाद कोई और किताब आती, फिर बोलूँ शऊर से, अगर कुरान के बाद फिर कोई और किताब आती तो ये जुमला आज के मुसलमानों के लिए होता। कितनों को समझ आ गया, आज के मुसलमान नहीं पिसरे, ठीक है पूरी उम्मत नहीं पिसरी क्योंकि अल्लाह के नबी की दुआ है। आप देख लीजिए सीरिया को देख लीजिए, बोस्निया को देख लीजिए, चेचनिया को देख लीजिए, पूरी दुनिया में आपको मुसलमानों के बार बार लुटने पुटने और उन पर जुल्म व सितम की मरहले सैकड़ों मिसालें मिलेंगी। तो ये अल्लाह का फ़ैसला होता है। अल्लाह ताला कौमों की तारीख सुनाकर ये एहसास दिलाते हैं कि जब कौमें अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानती तो अल्लाह ताला दुश्मनों को इन पर गालिब कर देता है। ये है जवाब कि सीरिया में ये कुछ क्यों हो रहा है और फ़लाँ मुल्क के मुसलमान इतने क्यों पिसरे हैं, और यही जवाब है अल्लामा इकबाल के उस शेर का कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पे, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे, बेचारे मुसलमानों पे कभी नहीं बर्क गिरी है, याद रखिएगा। اللہ دکھاتا ہے. تو آپ کو یہاں ایک سوال دیا جا سکتا ہے کہ تاریخ سنانے کا کیا مقصد ہے؟ تو وہی بات ہے, فاتبرو یا اولی الابصار, عبرت پکڑو اے آنکھوں والو. تو مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے. یہ تو اللہ کا شکر کیجئے کہ قرآن آخری کتاب ہے. ہوتی قرآن کے بعد کی کوئی کتاب جہاں لفظ یا بنی اسرائیل ہے نا, یا امت محمد ہونا تھا, یا امت محمد ہونا تھا. بلیو می, او مسلمانوں, شکر اللہ کا اللہ نے ہمارے پردے دنیا میں ہی رکھ لیے, اللہ آگے بھی ہمیں ڈھانک چھانپ بھی لے. ایک بنی اسرائیلی روایت کا خلاصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کرتے ہوئے کہا, اے اللہ, آپ تو آسمان پر ہیں اور ہم زمین میں ہیں, کیا علامت ہے اس بات کی کہ آپ ہم سے خوش ہیں یا ناراض؟ یعنی کیسے پتہ چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں کہ ناخوش؟ پہلے تو بتائیے کہ یہ سوال کس کے ذہن میں اٹھے گا جو واقعی اللہ سے پیار کرتا ہوگا. کیونکہ انسان کی فطرت ہے, جب وہ خود کسی سے پیار کرتا ہے نا, تو اس کا دل کرتا ہے وہ بھی مجھ سے کرے. اگر میں اس سے خوش ہوں تو وہ بھی مجھ سے خوش ہو. تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ, اگر کسی جگہ پر تم اچھے حکمران دیکھو, اچھے لیڈرز دیکھو, تو یہ میری اس قوم پر رضا مندی کی علامت ہے, اور اگر کہیں تم ظالم اور جابر حکمرانوں کو دیکھو تو یہ میری ناراضگی کی علامت ہے. اللہ اکبر, آج مسلمانوں پہ اللہ کیسا ہے؟ عقل مندوں کے لیے خود ہی سوچنے کا نقطہ ہے. پھر یہی واقعات بتائے جا رہے ہیں اس صورت میں, جب بنی اسرائیل کتاب پر عمل کرتی اللہ غلبہ دیتا. یہ بھی ہائی لائٹ کیجئے. مثلا کیسے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں بہت غلبہ ملا, دوبارہ بحالی ہوئی, تورات کو لکھا گیا, توبہ کی گئی, تھوڑی سی عزت ملتی ہے تو چلے گئے. یہ قوموں کا ایک عجیب مزاج ہے. ہائی لائٹ کیجئے اگلے جملے کو, غلامی میں سسکتے ہیں کہ کوئی موسیٰ آئے اور ہمیں نجات دلائے. اتنا جملہ ہضم ہو گیا. لوگ بعض دفعہ خود کسی موسیٰ کا انتظار کرتے ہیں, ہائے کوئی آئے, ہائے کوئی آئے, ہائے کوئی آئے. کیونکہ غلام تھے نا, فرعون نے بیگار میں لیا ہوا تھا ان کو. لیکن ہوتا کیا ہے, اور جب موسیٰ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں, ایک الہ ہمارے لیے بھی بنا دو جیسے ان کا ہے. چلیے ذرا سا اس کو اپنے اوپر لیتے ہیں. یہی حال آج ہم مسلمانوں کا ہے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ کارے جہاں دراز ہے, اب میرا انتظار کر. ہم کتنے شوق سے لیتے ہیں. اور آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس نئے نئے ہیں نا, اور جو بڑے پیار اور تپاک سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں آگے کورسز کروائیے, ساتھ ساتھ دو دو نفل پڑھنے شروع کر دیں. کورسز تو شروع ہو جائیں گے, آپ کے کہنے پہ چلے ہو جائیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ آپ اس میں جمیں گے کہ نہیں. دنیا کی تو سائٹ پہ کیجئے. انسان دین کی, علم کی نعمت بھی مانگتا ہے. ہائے کوئی انتظام کر دے اللہ, ہائے کچھ ہمارے لیے بھی کر دے. اور جب وہ انتظامات ہوتے ہیں اکثر پیچھے ہو جاتے ہیں. کل کسی جگہ پہ تھے, جو بھی تھی چھوڑ دیجیے آپ کو, مجھے کیا, ڈیڑھ سے دو سال شاید پہلے, اس سے پہلے تک وہ ایک مدرسہ تھا. کوئی جھگڑے شروع ہوئے, آ کے ذمہ داران نے تالا لگا دیا. کل کھلا وہ آپ کی وجہ سے. ہر عورت کے منہ پر یہی جملہ تھا کہ اللہ نے آج آپ کے اس درس کے نام پر یہ جگہ کھلوا دی ہے, اور کل وہاں پھر کورسز اناؤنس ہوئے ہیں. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جس پہ آپ نے ہاتھ ڈالا ہے. اگر آپ کی چیخیں نہ نکل گئیں تو مجھے پیچھے کر دیجئے گا. اللہ نے آپ کو یوں نچوڑنا ہے, اور اینڈ پہ پتہ کیا بچنا ہے؟ اصل وم مما ین فن ناسو فیم کو سب ہسک, سب کودا نکل جانا ہے اندر سے. بچتا ہی پھلتا ہے کہ بور کتنا لگتا ہے. آم لگتا ہے تو بور کتنا لگتا ہے؟ پھر آندیاں چلتی ہیں نا, تو وہ سب کچا بور جس میں کوئی کیڑا, کوئی کچا پکا, اس کو اٹھا دیتا ہے. اور اینڈ پہ وہ پکے ہوئے آم, درختوں سے جو آپ اترے ہوئے کھائیں, اس کا تو مزہ ہی اور ہے. یہ گرمیوں میں پیٹیوں میں ڈال کے اندر اس کا ڈالے, اس آم کا تو ٹیسٹ ہی نہیں ہے. یہ دعا کرے آج سے کہ اللہ مجھے درخت کے ساتھ جوڑے رکھنا. اس کو کہا تھا علامہ اقبال نے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. یہ اجتماعیت, یہ ٹیم ورک, یہ ہے پیوستہ رہنا. آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پڑھانا آتا, वन मैन शो भी हमने देखा कि उसके क्या कारनामे होते हैं। आप नहीं है तो काम ही नहीं होना, कुर्सी से लेके चाबी और खाना पकाना तक आपके जिम्मे है। तो आप फौत हो गए तो वो इदारा भी फौत हो जाएगा। इसमें तो मन मारना पड़ता है। अल्लाह आज मुसलमानों को यही दिखा रहा है, और यही नहीं आता हमें। नमाजें तो आज भी बड़ी पढ़ते हैं माशाल्लाह, कोई रोज़े रखने वाले आज भी थोड़े नहीं। कभी हज उमरे पे देखा करे कैसे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक से पुकारे आती हैं, वो अल्लाह को फिर गैरत दिला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान उमरा करके अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन हाल कुछ ऐसा ही है कि अल्लाह असल में तारीख़ के आईने में अपना आप दिखा रहे हैं कि मुसलमानों ये आईना देख लो, इट्स यू, इट्स योर फेस, जिसको आप कहते हैं ना कि आईना ही दिखा दिया अल्लाह ने मुसलमानों को, कि शर्म आती है ये मैं हूँ। उन्होंने तो कहा था लन नसविर अला तामिन वाहिद, यही कहा था ना। अब जिसको समझ है पहले पारे में पढ़ के आए हैं, कहते थे हम रोज़ एक ही जैसा खाना नहीं खा सकते। आज हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रोज़ एक नहीं, हम रोज़ 6 किस्म के खाने नहीं खा सकते, जो रोज़ ही 6 किस्म के खाते हैं। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा ये सबक भूल चुकी है। और जो हम जैसे 4-6 लोग मिल के ज़रा सा दीन का काम करें तो अंधों में काने राजे बन के मशहूर हो जाते हैं। करना ये काम सबको था, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आपका मेरा काम था अल्लाह के दीन की नुमाइंदगी करके पूरी दुनिया में फिरो। अंतुम शुहदा फिल अर्दी, तुम दुनिया में शहीद हो, तुम अल्लाह के चलते फिरते नुमाइंदे हो। तुम्हें जाके काम करना था, तुमने शहादतें हक की गवाहियाँ देनी थी। सारे बैठ के खाने पकाते हैं और 4 लोगों को आगे करते हैं, जाए जी आप शहादत हक की गवाहियाँ दें। हर फर्द को अंसारुल्लाह बनना पड़ेगा आज। तभी तो फिर जो हिजरतें करके आने वाले मुहाजिर हैं बेचारे नए नए, उनको पकड़ना पड़ेगा। देखिए एक बच्ची की मिसाल ले लें, क्योंकि औरतों पे ये ज़्यादा फिट होती है। 10 साल तक मेडिकल कॉलेज जाए, हाउस जॉब तक, वट एवर, और उसके बाद शादी के बाद घर बैठ जाए तो लोग क्या कहेंगे? ज़ाया की सीट तुमने, जब तुमने सर्विस नहीं करनी थी, जॉब नहीं करनी थी, इंसानियत को फ़ायदा नहीं देना, तो पढ़ा क्यों? डॉक्टर बन के घर बैठने वाले को लोग बुरा कहते हैं, दीन सीख कर घर बैठने वाले को लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात है, सीख लिया ना अब घर बैठो। तो बहरहाल ये तो एक वो कहते हैं ना कि दुखती रग है, इस पे पाँव को रख के तो आराम से तो नहीं जा सकता। ये है वो चीज़ जिसके बाद अल्लाह के खजानों में से मदद आती है। आपको मौजज़े ना दिखें तो ना दिखें, देखने वालों को दिखते हैं। सारी ज़िंदगी अब दीन का काम करते रहते हैं, माजरत के साथ वो दीन का काम नहीं बनता, अल्लाह की मदद ही कोई नहीं आती। तो ज़रूरत इस बात की कि आज हम मुसलमान अपने पाँव में देखें, अपने जूतों में देखें, अपने कपड़ों को देखें, मेरे जूते ठीक है, मेरे कपड़ों का साइज़ ठीक है। ये है आज के फितने। दीन वालों को नहीं पता कि दीन कहता क्या, सिखाता क्या। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आगे चलिए आयत 7 से 8, बहुत प्यारी आयतें, इसको हाईलाइट कीजिएगा। इन अहसनतुम अहसनतुम लि अन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा। ये आयत कायना है। अगर तुम नेकी करोगे तो वो नेकी तुम अपने लिए करोगे, और अगर तुम बुरा करोगे तो उसका वबाल तुम पे पड़ेगा। अल्लाह ने 7 और 8 में क्या बताया? अल्लाह का बंदे के साथ मामला बंदे के मामले की तरह होता है। ज़रा सा समझिए जुमला, इसमें आप कॉमा लगा लेंगे तो बात समझ आ जाएगी। अल्लाह का बंदे के साथ क्या मामला होता है जो बंदे का अल्लाह के साथ मामला होता है? गहरा जुमला है। जैसे पीछे सुना है ना अपने, फर्स्ट कुरून यज़कुरकुम, तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, ठीक है। और यदि अल्लाह बंदे के साथ क्या करे, सीधी सी बात है, जो बंदा अल्लाह के साथ कर रहा, फिर भी नहीं समझ आई। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। यानी इफ़ यू आर सीरियस, अल्लाह भी आपके साथ सीरियस है। आप चाहती हैं अल्लाह को मिलना, अल्लाह कहता है मैं भी चाहता हूँ तुमसे मिलना। आप कहती हैं कि अल्लाह मुझसे दीन का काम करा, अल्लाह कहता है मैं भी चाहता हूँ तुमसे दीन का काम कराऊँ। आप कहती हैं मेरे मामलात बड़े फेयर हो जाए, अल्लाह कहता है मैं भी आपके साथ यही तो चाहता हूँ। आप कहती हैं आज रात से तहज्जुद के 2 नफिल नसीब हो जाए, अल्लाह कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। देखिए समझिएगा, इंशाअल्लाह कितना बोलते हैं, लिखिए इंशाअल्लाह मशरूत है आपकी शाह से, समझ आइए। अल्लाह वो कराता है जो आप चाहते हैं। ये तकदीर का मौजू है, इस पर हमने घंटों बातें की हुई हैं। वमा तशाउन इल्ला यशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। बज़ाहर दुनिया में वही हो रहा है जो अल्लाह चाहता है, लेकिन हम अल्लाह से वो करा रहे हैं जो हम चाहते हैं। بس اللہ کرے اتنی ہی بات سمجھ آ جائے. پھر آئے دیکھیں 9 اینڈ 10, 9 سے 10, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سیدھی راہ دکھاتا ہے. یہ بھی آیت بڑی پیاری آیت ہے, ان نحاظ القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن اعزا, یہ دیکھیں میرے ہاتھ کو, سیدھی کیا چیز لے کے جاتی ہے. آپ گاڑی چلانے والے کو ذہن میں لائیے, تھوڑا بہت تو سب کو ہی پتہ ہے, گاڑی کا وہ کون سا پرزا ہے جو گاڑی کو سیدھا رکھتا ہے؟ شاباش بولیے, سٹیرنگ. تو یہ لکھ لیجئے, اقوم کا معنی سٹیرنگ ہے. سٹیرنگ سے ہاتھ ہلے تو گاڑی ادھر جا سکتی ہے, گاڑی ادھر جا سکتی ہے, ٹکرا بھی سکتی ہے, کہیں کسی سے لگ بھی جائے گی. ڈرائیور صرف سٹیرنگ کو ہولڈ کر کے بیٹھا ہوتا ہے, اور اب تو ایسی گاڑیاں کروز لگے ہوتے ہیں, سیٹ کرتے ہیں ایک اسپیڈ, وہ نہیں پھر ہلتی گاڑی, وہ سیدھا ہی جاتا ہے. قرآن آپ کا میرا سٹیرنگ ہے, اس کو پکڑے رکھیں گے زندگی کی اس شاہراہ پہ سیدھے رہیں گے. ایک دن صراط المستقیم, آج چھوڑے ہوئے ہیں, دیکھیں کبھی ادھر دھکے کھاتے ہیں, کبھی ادھر کھاتے ہیں, ہماری گاڑیاں کبھی ادھر ٹکراتی ہیں, کبھی ادھر ٹکراتی ہیں. قرآن پاک کیا ہے؟ سیدھی راہ دکھاتا ہے, بندے کو حیات طیب پر لے جاتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا جائے, نہ کہ صرف دیکھ دیکھ کر خوش ہونے والی کتاب. اتنی دفعہ پڑھ لی, اتنا پڑھ لیا, یہ ہے وہ ہے کوئی ایسا؟ اس کو اپنا بنا لیں, سیدھے رہیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے بچوں کو اس قرآن کا سٹیرنگ پکڑا دیجئے, شوہروں کو پکڑا دیجئے, خود سب سے پہلے پکڑ لیجئے. دیکھیے گاڑی کو تصور میں لائیں, ایک شخص گاڑی چلاتا ہے, دوسرا اس کے ساتھ فرنٹ رو ہوتی ہے, اس پہ بیٹھتا ہے, پیچھے عموماً کتنے ہوتے ہیں؟ عام گاڑی میں 3 ہیں, ذرا سی بڑی لے لیجئے 5 ہیں, 7 ہیں. بس کو ذہن میں لائیے, ڈرائیور کتنے ہوتے ہیں, کنڈکٹر کی جگہ پہ کتنے ہوتے ہیں؟ بس کتنے سیٹر ہوتی ہے؟ موسٹلی 50-60 سیٹیں. ٹرین کو لیجئے, انجن کو کون ہولڈ کرتا ہے؟ بس آپ اپنے گھر کی اور اپنے خاندان کی وہ ڈرائیور بن جائیے جس نے قرآن کا سٹیرنگ پکڑا ہوا ہے. اس گاڑی کی بوگیوں میں آپ کی فیملی بیٹھے, آپ کے سسرال والے بیٹھے, آپ کی دوستیں, آپ جہاں بھی گئیں دنیا کا کچھ بھی سیکھ کر ڈاکٹر بن گئیں, آپ اس سٹیرنگ پہ سیدھے رہیے, انشاءاللہ اس گاڑی میں بیٹھنے والے سب سیدھے ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گاڑی سیدھی جائے اور اس میں سے کوئی گاڑی میں سے نکل کر سائڈ پہ گر جائے. تو اصل میں آپ کو مجھے اپنا سٹیرنگ سیدھا کرنا ہے. یہی تو سورۃ مائدہ میں پڑھ کے آئے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے لوگو اپنی فکر کرو, لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, کوئی شخص تمہیں بہکا نہیں سکتا, شرط یہ کہ تم خود سیدھے رہو. اگر میں سیدھی ہوں تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی سیدھا کر لوں گی. ٹائم لگتا ہے, کچھ کے گھر والے جلدی سیدھے ہو جائیں گے, کچھ کے دیر سے, اور آپ خود ٹیڑھی ہو جائیں تو کوئی بھی نہیں سیدھا ہوگا, جو سیدھے ہیں وہ بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اپنے بارے میں سوچئے, چند سوال کریں خود سے, کیا میرا سٹیرنگ سیدھا, کیا میں صحیح رخ پہ جا رہی ہوں, کیا میں نے کتاب کو صحیح طرح سے تھاما ہوا ہے, کیا میں اپنی زندگی کے فیصلے اور معاملے کتاب کو سامنے رکھ کے کرتی ہوں. آج آپ کو یہ راز کھلے گا کہ عورت گھروں کے قبلے صحیح کروا دیتی ہے. لوگ مردوں کو خامخواہ بدنام کرتے ہیں, اللہ نے یہ سارے کام عورتوں کو دیے ہوئے ہیں. آج ہم عورتیں سیدھی ہو جائیں, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ پھر ابھی تک آپ کو کیا سمجھ آیا؟ ابھی تک جو موضوع کور کیا گیا ہے اس کی روشنی میں آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ جو امت مسلمہ میں ہے وہ کیا ہے؟ جی بولیے. مال کا فتنہ, یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی. جی, اللہ کے حکم کو نہ ماننا, کافی مانتے بھی ہیں. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا. اچھا جی, ایک اور بول دے تو پھر میں بولتی ہوں. میں پوری بات نہیں سمجھا سکی آپ کو. یہ بڑے بڑے لفظ ہوتے ہیں. بیماری کا علاج کرنا ہے نا, اندر سے بیماری کے جراثیم ڈھونڈے, فوکس نہیں ہے, ہم کمیٹڈ نہیں ہیں, ہم دین کو پارٹ ٹائم سائیڈ ایشو سمجھتے ہیں, اور کھانے پینے, بچے, رشتے, گھر بنانے, کیریئر, اس کو فرسٹ پرائیورٹی رکھتے ہیں. جی, जी शाबाश, यानी हम अपने दुनिया की चीज़ें, दुनिया की तरक्की, कामयाबी को आगे रखते हैं अजान में और इकामत में। हैया अलस सला, हैया अलल फला। क्या जुमला है इसका उर्दू में? नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। हम सारा दिन कामयाबी के पीछे भागते हैं और नमाज़ें छोड़ते हैं। होंगे हम कभी कामयाब? आप जाइए यूनिवर्सिटी में, भागें, मर जाएं जॉब्स पे, कामों पे जाएं, नमाज ना पढ़ें वक्त पे, कि छोड़ो, हम नमाज को तो बिल्कुल पीछे डाल देते हैं खाते गए। कामयाबी क्यों नहीं है? तो बहरहाल दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको इस फितने से बचा लें।